स्टेज है उसकी, जो एक आश्रम है, कि उसकी सेवा करने मात्र से हमारा क्या क्या फायदा हो जाता है। इतना भी बताया गया पिछले श्लोकों में कि भगवान स्वयं ये बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी अगर ग्रहण करता हूं तो ब्राह्मणों के मुख से ही ग्रहण करता हूं। और फिर इतना भी बताया गया कि जो इस प्रकार के शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जो सदैव भगवान के नाम कीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों की तो भगवान भी पूजा करते हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं कि भाई इतना ज्यादा इस पर्टिकुलर वर्ण में, ब्राह्मण कुल में, इसका इतना ग्लोरिफिकेशन क्यों हो रहा है। एक बार हम कहीं प्रवचन दे रहे थे तो हमने थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया इस प्रकार ब्राह्मण को, तो एक ने प्रश्न कर लिया कि इस तरह तो आप फिर से समाज को बांट रहे हैं अगर आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो, है ना, आप ब्राह्मण को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो, है ना, पहले भी तो हमारे समाज में कितनी सारी समस्याएं रही हैं, जब समाज में नाना प्रकार की छुआछूत की बीमारियां जब चली, तो हम देखते हैं इन प्रवचनों को सुनकर कहीं व्यक्ति ये ना बोल लगे या उसको ऐसा ना लगने लग चाहिए कि आप तो फिर से उस कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। अभी तो राजा राममोहन राय, तिलक और पता नहीं कितने कितने समाज सेवी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, पूरा जीवन लगा डाला ये समझाने में कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, छुआछूत नहीं करना चाहिए। और आप इन प्रवचनों के द्वारा, भागवतम के माध्यम से, फिर से आप ब्राह्मणों की स्थिति को ऊंचा बताकर समाज के अलग अलग भाग कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई सोच सकता है कि नहीं? जो नए लोग आए वो तो सोच सकते हैं भाई ब्राह्मणों को इतना क्यों। आजकल तो हमारे जो 6 मूल अधिकार हमें दिए गए हैं सरकार के द्वारा, उसके उसका जमाना है, डेमोक्रेसी का जमाना है, क्या ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य क्या बात कर रहे हैं। आपके अंदर जैसी जैसी चीजें हैं वैसा करिए, बस खाओ पियो ऐश करो। आप इस प्रकार से फिर से ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई कर समाज को फिर से क्यों बांटना चाह रहे हैं, कोई सोच सकता है? तो वास्तव में क्यों इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में ब्राह्मण का इतना मान बढ़ाया गया, इतना सम्मान किया गया, ये उनको ग्लोरीफाई किया, यहां तक कि भगवान भी कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों को तो कि मैं भी पूजा करता हूं। तो फिर कईयों को लगेगा अरे यार हमारी तो कास्ट ब्राह्मण वाली नहीं है, हम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। कोई कहेगा यार हम तो वैश्य कुल में पैदा हुए हैं, हम तो बिजनेस क्लास टाइप के लोग हैं। कुछ लोग कह सकते हैं अरे हमारी तो कोई कास्ट नहीं, हम तो शूद्र हैं, या जिसे बोल सकते हैं जिन क्या और शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं शूद्र का भी कुछ और समान, लेबर क्लास हैं हम लोग, हम तो समाज के निकृष्ट कुलों में पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज हमारे माता पिता ये काम किया करते थे, अब हम तो नहीं करते ना। तो इस प्रकार आप फिर से ब्राह्मण को ग्लोरीफाई कर या शास्त्र ब्राह्मण को ग्लोरीफाई कर या भगवान भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं ऐसे भक्त को, तो फिर हमारी तो कोई स्थिति नहीं है, मतलब हम फिर मंदिर क्यों आए। तो हम देखते हैं थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, तो वैसे यही ग्रंथ ये भी बताता है कि जैसे 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, आपको पता है ना, सबको सुना होगा आप लोगों ने, 84 लाख प्रकार की योनियां। अब इन 84 लाख योनियों का विभाजन किया है शास्त्रों में जलजा नवलक्षाणी, इतनी सारी लिविंग एंटिटीज हैं उसमें 9 लाख प्रकार की जल के अंदर है, प्रकार बता रहे हैं वैरायटीज, ये टोटल पॉपुलेशन नहीं बता रहे। और उसके बाद ये बताया स्थावरा विंशति, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 20 लाख प्रकार के अलग अलग वैरायटी है 20 लाख प्रकार की। क्रमय और रुद्र संख्या का पद्म पुराण कहता है 11 लाख प्रकार के रेगने वाले जीव हैं, मतलब इनकी भी वैरायटी अलग है, सांप बिच्छू और पता नहीं कितने कितने प्रकार के। फिर कहते हैं 10 लक्षणाम पक्षीणाम, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी हैं, किसी को छोड़ा नहीं। आप देखिए हम सब इसमें आ जाएंगे कहीं ना कहीं, या जिनको हम देखते हैं वो सब इसमें आएंगे। फिर कहा 30 लक्षाणी पशुआ, 30 लाख प्रकार के पशु हैं, कितने हो गए सोचना पड़ रहा है। अगर मैं बोलता कि 9 लाख रुपए हैं, 11 लाख रुपए हैं, तो लोग इमेज लगाते 80 लाख जी, है ना। समय हमेशा चिंतन धन का होता है, पैसों की बात करते हैं या किसी इंटरेस्ट वाली बात करते हैं, योनियां बता रहे हो प्रभु जी क्या फायदा, कौन हिसाब लगाए। तो कितनी हो गई? 80 लाख योनियां हो गई। और बता रहे हैं चतुर्लक्षाणी मानुषा, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। 4 लाख प्रकार के, हम तो एक ही प्रकार के, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये अलग अलग मानसिकता चेतना के हिसाब से विभाजन किया गया है, जिसमें देवतागण भी आते हैं, यक्ष किन्नर विद्याधर सिद्ध पुरुष जितने ऊपर ऊपर के लोगों में रहने वाले लोग हैं उनकी भी पॉपुलेशन इसी में है, और हमारे जैसे मनुष्य और कुछ वैसे भी जो जल्दी चले जाते हैं, जो कर्ज अदा नहीं कर पाते या घर में फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, तो क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो प्रेत आत्मा भी है उनके लिए, प्रेत भी एक योनी है, और प्रेतों में भी कई प्रकार के असुर हैं, निशाच पिशाच जिन और पता नहीं क्या क्या। ये जब भगवान शिव ने उत्पत्ति की थी तो उसमें संख्या दी भी है कौन कौन कैसे कैसे निकलते हैं। तो इस प्रकार 84 लाख प्रकार की योनियां, तो हम सब आ गए इसमें, और जिनको हम देखते हैं वो भी आ गए, सब आ गए ना। और इसके अलावा बताया गया, ये जो चेतना का हिसाब बताया गया उसके भी 5 विभाग किए गए। इन 84 लाख को 5 चेतनाओं से विभाजित किया गया। एक है मुकुलित चेतना, एक है संकुचित चेतना जो पहाड़ों में पत्थरों में बिल्कुल संकुचित, मुकुलित चेतना है जो घास में वृक्षों में रहती है। उसके बाद बताया गया है अविकसित चेतना, ज्यादा डेवलप नहीं है कॉन्शियसनेस। तो ये कौन सी चेतनाएं हैं? जो पशुओं में पाई जाती है, ज्यादा विकसित चेतना नहीं है, है ना। जैसे कई बार घर में कोई बच्चा काम ना करे, बार बार बोलना पड़े किसी काम को, तो माताएं क्या बोलती हैं? किसी जानवर से उसकी तुलना करती हैं, क्या बोलती हैं? ज्यादातर डंगर की तरह खा रहा है, या गधे की तरह काम कर रहा है, या मतलब हम सब जानते हैं, तुलना करते हैं। जब देखते हैं कोई कोई व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं ले रहा, किसी को 4 बार बोल दिया उठो यहां से, नहीं उठ रहा, तो कुछ ना कुछ शब्द बोल देते हैं हम इस प्रकार के, मतलब तुरंत याद आता है कि हाँ ये वो जानवर है, उसकी तरह काम कर रहा है। इस जैसे गाड़ी से जाते हैं, हम देखते सड़क पर बिल्कुल बीच में कुत्ता लेटा है, वो देख रहा है बेचारा, सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक गाड़ी आती है फिर उठ के देखता है, फिर सो जाता है, फिर बाइक आती है फिर खड़ा हो जाता है, फिर देखता है। उसकी इतनी चेतना नहीं कि उठ के सड़क पार करके कोने में सो जाऊं, है कि नहीं। गायें हैं, है ना, ये सड़क पे डिवाइडर का काम करती है, इधर लेफ्ट जाए इधर राइट जाए, है ना, उसको सड़क पार करनी है, कुछ करना है, तो बड़ी परेशान रहती है वो बेचारे। वो देखती है अलग प्रकार की गायें आ रही है चार चार पैर में, अलग प्रकार के जानवर आ रहे हैं चार चार पहियों पे, और भोंकते भी अलग तरह से, तो उनको लगता है ये अलग तरह के जानवर चल रहे हैं मेरे आसपास। जानवरों को भी लगता है ये अलग प्रकार के जानवर, थोड़े बड़े साइज में, शास्त्रों के हिसाब से देखें तो अंदर बाहर सभी जानवर हैं। तो ये है कम विकसित वाली चेतना के लोग, तो अधिकतर पशु कहे जाते हैं। और एक है डेवलप कॉन्शियसनेस, विकसित चेतना वाले लोग। ये कौन लोग हैं? इसमें ज्यादातर मनुष्य आते हैं, ज्यादातर। और जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, इस प्रकार के लोग जो अपना भला जानते हैं किसमें है, और अपना जो है सवे पुंसा परो धर्म यदो भक्ति अधोक्षजे, मतलब भक्ति करने का प्रयास करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इस प्रकार के कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और एक है पूर्ण विकसित चेतना के लोग, इसमें देवता लोग भी आते हैं, इसमें मनुष्य भी आते हैं, लेकिन कुछ जिनकी चेतना पूरी तरह से डेवलप्ड है, आत्म साक्षात्कार किए हुए भक्त लोग, ब्राह्मण लोग जो जानते हैं शरीर और आत्मा का भेद और इस संसार का और आध्यात्मिक जगत का अंतर, तो इस प्रकार की चेतना के लोग। तो चेतना के हिसाब से भी 5 विभाग हैं, ये 84 लाख में ही अगर बात करें। और भागवतम में ही एक जगह और बताया गया और अच्छे तरीके से, ताकि हम समझ सकें अंत तक कि किस प्रकार, सबसे पहले बताया गया कि जो पहाड़ या पत्थर या वृक्षों के रूप में है, ये सबसे ये जो लिविंग एंटिटीज हैं, इसमें जो जीवन है, इससे अच्छा जीवन उनका है जो हिल बोल रहे हैं, थोड़ा हिल रहे हैं। ये तो हिलते नहीं ना, वृक्ष एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो इनसे अच्छी योनियां वो हैं जो हिलती हैं थोड़ी बहुत, और जो हिलती हैं उनसे अच्छी बताई गई है वो जो थोड़ी चलती हैं या थोड़ा ज्यादा मूवमेंट करती हैं या जिनके ज्यादा पैर हैं। फिर कह रहे हैं इतने ज्यादा पैर वालों में से भी ज्यादा महान या ज्यादा अच्छे कौन से हैं, जिनके चार पैर हैं और उनसे भी अधिक जिनके दो पैर हैं। तो हम लोग किसमें आ गए, दो पैर वाले में। फिर बता रहे हैं इन दो पैर वालों में भी जो लोग थोड़े से और जिनकी कॉन्शियसनेस डेवलप है, जो जिसे बोल सकते हैं अभी पशुओं की तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो शूद्र भी अच्छे हैं उनसे, है ना, क्योंकि दो पैर हैं लेकिन अपने कर्तव्य को करते हैं। फिर उनसे अच्छे हैं वो लोग जो वैश्य इत्यादि हैं, जो सबके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, अन्न इत्यादि उत्पादन करते हैं। और उनसे भी अच्छे हैं वो लोग जो सबकी रक्षा करते हैं, क्षत्रिय लोग। उनसे भी अच्छे बताए गए हैं वो व्यक्ति जिसने एक वेद पढ़ा है। आप लोग देखते होंगे कई बार कईयों की कास्ट होती है, मिस्टर वेद, है ना, किसी को बोलते द्विवेदी, तो कहते हैं एक वेदी से अच्छा है दो वेदी वाला जिसने दो वेद पढ़े हैं। अब ये नहीं मालूम उनकी कास्ट ऐसी क्यों रखी गई है, शायद इसी से कोई संपर्क होगा उनका, तो जिन्होंने दो वेदों का अध्ययन किया है और दो वेदों उसके अलावा एक और जिसने तीन वेद पढ़े हैं वो त्रिवेदी, और जिसने चार वेद पढ़े हैं, हमारे में है कोई यहां पर इसने? इन वेदों में ओके नहीं। लेकिन अगर आप उन वेदियों के पास जाओ, उनको बोलो भाई साहब कितने वेद पढ़े हैं, तो कहेंगे जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे यहां। तो अब जो वेद वेदी या द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी हैं, ये उस तरह की वेदी नहीं है। लेकिन बता रहे हैं शास्त्र कह रहे हैं कि जिन्होंने वेद पढ़ा है और वेदों के हिसाब से कार्य कर रहा है, तो ये उनकी स्थिति उन मनुष्यों में भी ऊपर है, अलग अलग आश्रमों में और वर्णों में। फिर कह रहे हैं जो चारों वेद पढ़ चुका है वो इन सारे वेदियों से अच्छा है। और जो ब्राह्मण है, मतलब क्षत्रिय तक आ गए थे, तो जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर जिसने वेद पढ़ा है, तो उसकी बात करी जा रही है। फिर वो ब्राह्मण ज्यादा अच्छा है जिसने चारों वेद पढ़े। और कह रहे हैं कि इन चारों वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों में भी वो श्रेष्ठ है जो वेद पढ़कर उसको अपने कर्मों में लेकर आ गया। ब्राह्मण का क्या काम होता है, पठन पाठन यज्ञ याजन, है ना, तो वो जो छह उसके कार्य हैं, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, जो इस प्रकार के काम कर रहा है, इस तरह के कार्य कर रहा है, वेदों को पढ़कर अनुष्ठानों का जो है पूजन इत्यादि कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। और उसके बाद इन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण की बात हो रही है ना, क्योंकि ये देखिए इतनी सारी लिविंग एंटिटीज हैं संसार में, अणु में परमाणु में बैक्टीरिया बैक्टीरिया घूम रहे हैं, उसके बाद फिर पहाड़ों में वृक्षों में पशुओं में, और अब मनुष्यों की भी बात कर दी। मनुष्यों में भी हमने वर्ण और आश्रम के हिसाब से इनको अलग कर दिया, क्योंकि अधिकतर अब पशु की तुलनात्मक दृष्टि से हमने देखा कि मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सेंसेस डेवलप्ड हैं, सुन सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, चल फिर सकता है, अपनी बुद्धि से काम कर सकता है, इसलिए इसको श्रेष्ठ बोला गया। तो क्योंकि इनको श्रेष्ठ बोला गया है, तो अब वो लोग कहां हैं जो ये बोलते हैं कि आप भेदभाव करते हैं, फिर क्यों नहीं इनको पशुओं के साथ तुलना कर रहे? नहीं, पशुओं को खा सकते हो, आदमी को नहीं खा सकते, तब आप नियम बनाते हो, अब ये भेदभाव नहीं है क्या? पशुओं को आप जो है बंद रखते हो और मनुष्य को खुला रखते हो, कहां है वो डेमोक्रेसी वाले लोग, अब क्यों नहीं बोलते? अब नहीं बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो पशु हैं और हम मनुष्य हैं। अच्छा, मनुष्य को आप एक प्लेट एक नजर से देखना चाहते हो, लेकिन दूसरे जीवों को नहीं देखना चाहते, भगवान की दृष्टि में तो सारे ही एक हैं। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण है वो क्यों इतना श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि इतनी सारी योनियों में अलग अलग चेतनाओं में जो जीव आत्माएं घूम रही हैं, और इतनी सारी जीवात्माओं में जिस व्यक्ति को मनुष्य देह प्राप्त हो गया, दुर्लभ मनुष्य जीवन जिसे बोला गया। एक गोविंद देव जी हैं, भजन में बड़ा सुंदर बोलते हैं, भजो रहे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद। क्यों? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। कह रहे मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। नहीं नहीं प्रभु जी, इसमें भी 7 अरब हैं। तो हमने बताया कि 7 अरब मनुष्य तो हैं, लेकिन इन मनुष्यों में जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य कर रहा है, वैश्य धर्म का पालन कर रहा है, कोई क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, तो वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ होते जा रहे हैं वर्णों के हिसाब से। लेकिन साथ ही साथ अगर वो वेदों का अध्ययन कर रहा है, क्यों भाई वेदों में ऐसा क्या है? सर मैंने फिजिक्स पढ़ा है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, वेद का नहीं पढ़ा, बस में क्या दिक्कत है? मेरे पास PhD की डिग्री है, मेरे पास इंजीनियरिंग का डिग्री है, वेद ही तो नहीं पढ़ा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम है क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर हमारी चेतना जिसे बोलते हैं उसकी एडवांसमेंट नहीं होने वाली। इन डिग्रीज को लेकर मुझे यह नहीं मालूम पड़ता कि मैं कौन हूं, इस संसार में मैं क्यों आया हूं, भगवान कौन है और उनसे मेरा संबंध क्या है, ये डिग्रीज लेकर नहीं मालूम पड़ता। इसलिए जब हम लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाकर या यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर देते हैं तो प्रोफेसर भी बैठे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैठे होते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट को CEOs भी बैठे होते हैं, जनरल मैनेजर्स बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज है उनके पास। एक छोटा सा सेमिनार अटेंड करने के बाद वो बोलते हैं कि सर आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं कौन हूं। हाँ, लिटरली 40-50 साल के बाद कहता मुझे मालूम पड़ा कि मैं कौन हूं। मैं तो अभी तक ये मानता था कि मैं मिस्टर अरोड़ा हूं, मैं मिस्टर अग्रवाल हूं, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। और मैं इसी हिसाब से अपनी पोस्ट के हिसाब से काम करता था, और मैं इसको लगता था जीवन का मतलब उद्देश्य है खाओ पियो बच्चे पालो और खत्म हो जाओ बस। आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं कौन हूं, 50 साल के बाद एक सेमिनार से उनको यह पता चलता। इसका मतलब क्या है कि वो जितनी डिग्रीज उसने ली थी, जितनी 15-18 साल उसने पढ़ा था, वो पढ़ाई प्लस संसार का सारा एक्सपीरियंस क्या रहा उसका? 0। अब मालूम पड़ा उसको कि मैं कौन हूं असली में। अच्छा, मैं आत्मा हूं और ये शरीर एक वस्त्र के समान है, अब मालूम पड़ा। ऐसी रियलाइजेशन आती हैं। तो जो भौतिक ज्ञान है वो वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। भौतिक ज्ञान तो बोल सकते हैं वो इस प्रकार की कंडीशनिंग है जो हमें और कंडीशन कर देती है। समझ पा रहे मत? तो जब कोई व्यक्ति डिग्रीज की बात करता है तो ही इज कंडीशन बाय इंजीनियरिंग डिग्री, ही इज कंडीशन बाय MBBS डिग्री, ही इज कंडीशन बाय अदर डिग्रीज। उसने अपने 5-7 साल और बिताए हैं एक ऐसे सब्जेक्ट में लगाए हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं था भगवान से या आत्मा से। हां, रोटी कमाने के लिए ठीक था, क्योंकि संसार में रोटी उसी को मिलती है, ये वही कमा पाता है, लोगों को लगता है, जिसके पास ऐसी डिग्री है। लेकिन हम देखते हैं जिसके पास डिग्री नहीं है, रोटी तो उसको भी मिल रही है ना। ऐसे एक दिन हम एक मैसेज पढ़ा था, उस मैसेज का मतलब क्या था कि स्कूल में जैसे बच्चे सब लोग पढ़ते हैं, कई लोग स्कूल नहीं जा पाते और कुछ जाते हैं, और जो जाते हैं वो पढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग तो फेल हो जाते हैं, कुछ लोग बंक मारते हैं, कुछ लोग इधर उधर चले जाते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं ऐसे बड़ी बड़ी डिग्रीज अच्छी रैंक लाकर वो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जा, वो सॉरी MBA कर लेते हैं। तो पता चलता है कि इतनी अच्छी इतनी मेहनत, इतना क्वालिफाइड बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, ब्राह्मण मेंटालिटी का था, अभी वो अच्छी डिग्री लाकर शूद्र वाला काम कर रहा है, और जो बंक मार के भाग जाता था, इधर चला जाता था, अब उसने अपनी कंपनी खोल रखी है। स्टीव जॉब उसका भी सुना ऐसे ही था। तो अब ऐसे इंजीनियर्स को वो अपने पास रखते हैं, आइए जॉब कीजिए यहां पर, ऐसे MBAs उनके लिए टारगेट पूरे कर रहे हैं। ये बात बोलकर हम लोग आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, वैसे बता रहे हैं व्यंगात्मक वो था। फिर कहते हैं कि ऐसे वो उनके चरणों में कि भैया हमें नौकरी दो, और ये बिजनेसमैन किसके चरणों में, ये उनके चरणों में जाते हैं जो स्कूल ही नहीं जाते थे, या जाते थे तो और भी बुरी स्थिति थी इनकी, वो जो नेता बन गए, हम नेता बनूंगा, हम तुम्हारे बिजली लगाऊंगा, हम ये करूंगा, हमें वोट दीजिए, और ये लोग इनको वोट देते हैं और इनको क्या बना देते हैं, नेता बना देते हैं। अभी वो इंजीनियर है वो उसके चरण छूता है सैलरी के लिए, और वो बिजनेसमैन अपनी फाइल घुमाने के लिए नेता के चरण छूता है, नेता कहता है ठीक है इतना और दे दीजिए हमको, इतना काम करवा देंगे, हो गया काम, सारा पानी खराब कर दिया है तुमने बिजली निकालकर, ऐसा बोलते हैं, सारा विटामिन निकल गया है उसमें से। तो इस प्रकार अब ये नेता ये किसके चरणों में जाते हैं, ये जाते हैं वो जो स्कूल ही नहीं गए कभी, चाकू रखते थे हर एक की गर्दन पर लगाते थे, अब वो माफिया बन गए, अभी ये नेता उसके चरण छूता है, साहब वोट चाहिए, ये थोड़ा बोतल बोतल बंटवा दो, और ये सामने की पार्टी का ज्यादा बोलता है इसको उड़ा दो, और ऐसा ऐसा कर दो, ठीक है। उस इंजीनियर बिजनेसमैन के, बिजनेसमैन नेता के, और नेता किनके, माफिया के। अभी क्या है, ये बड़ा अच्छा सीरीज बन रहा है। अभी जो और खतरनाक लोग हैं जिन्हें कुछ करना नहीं, निठल्ले, कोई दिक्कत नहीं थी बस, तो वो क्या करते हैं, इधर मारा इधर मारा, अभी उनको लगता है माफिया का तो फिर भी ये है कि उसको नेता का शेल्टर है, बच जाता है, मेरे जैसे चोर तो बच नहीं पाएगा। वो क्या करता है, वो लाल कपड़े पहन लेता है, ऐसे जटाएं बांध लेता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मुझे पहचाने ना, क्योंकि उधर चाकू मारा था, इधर पैसा घुमाया था, पुलिस पकड़ लेगी मेरे को, तो चला जाता है हरिद्वार। अभी क्या है, उसका नाम हो गया, उसका पोस्टर लग गया, वो थोड़ा बहुत कथा भी करने लग गया, अभी वो माफिया भी उसके चरण छूता है, बाबू जी बचा लो, बताओ मेरा हाथ देख करके कब सब कुछ ठीक होगा। इधर नेता भी उसके चरण छूता है, इधर वो बिजनेसमैन भी उसके चरण छूता है, इधर वो पढ़े लिखे लोग भी उसके चरण छूते हैं, और ऐसे लोग बड़े बड़े टीवी में होर्डिंग्स लगाकर बड़े बड़े गुरु बन जाते हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था ना कि एक ऐसे व्यक्ति था जो गुरु बना हुआ था कहीं, बड़े टाइम से पुलिस ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, फोटो ढेंग ढेंग अखबारों में, इतने का नाम इतने का नाम, मिल ही नहीं रहा था। अचानक देखा उसकी बीवी को फोन आता है रोज, उसकी बहन का रोज रात को 10 बजे फोन आता है, उन्होंने उसको ट्रैप किया, कहां से आता, कहते ये तो बद्रीनाथ से आ रहा है, तो समझ आ गया इसको कुछ गड़बड़ मामला है। तो जब पता चला ये वहां पर है, तो सारे जो सीबीआई के लोग थे उन्होंने लाल लाल कपड़े पहन लिए, वो भी साधु बन गए, और उस साधु के पास गए, महाराज महाराज हमारा हाथ देखिए, हमारा ये देखिए, जब देखा यही वही है, तो कहा सब, कहता तुम्हारा सब ठीक है बढ़िया, कहता अच्छा सर ये गन लगा, मिस्टर चर नाम नहीं लेते, पता नहीं कोई और भी हो सकता है यहीं बैठा कोई, तो मिस्टर एबीसी अभी आपका टाइम पूरा हो गया, तो वो बेचारे को पकड़ लिया, कहते अभी शोर नहीं मचाना, अभी इधर से निकलेंगे संकीर्तन करते हुए, बीच में रहोगे आप, 6 लोग हम आसपास होंगे, ताली बजाते हुए जाना ताकि किसी को शक ना हो, ज़्यादा बोलोगे तो खर्चा पानी दे देंगे अंदर, कहते ठीक है साहब करते हुए उसको ले करके जेल में, अभी वो जेल में है। तो हम ब्राह्मण की बात कर रहे थे, क्यों ब्राह्मण को फिर इतना वो बोला गया, कारण कि जो इस प्रकार की मनुष्य का जो देह प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन सो कॉल्ड मनुष्य आहार निद्रा भय मिथुन में जी रहे हैं, जिन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, इन सबसे अच्छा वो व्यक्ति है जो जीवन के लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहा है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, वेद क्या है, उन ग्रंथों को पढ़ रहा है, फिर अपने कर्तव्य को पालन कर रहा है, क्या वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, दूसरों को भी समझा रहा है भैया मनुष्य जीवन दुर्लभ है, जीवन का असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो शास्त्र कह रहे हैं, जैसे इसमें भी बताया, कुछ कर्मकांडी भी होते हैं, वेद पढ़ते हैं, ऋचाएं पढ़ते हैं, अनुष्ठान सीख लेते हैं, और जब हमारे जैसे दुखी पतित आत्माएं वहां पहुंचती हैं, साहब ब्राह्मण देवता हमें कुछ करो, ये संकट है हमारे पास, वो देखता हाँ ये सब कुछ है इस वेद में, यहां पर ये चीज लिखी है, तुम ये अनुष्ठान करो, तो कर्मकांड कराते हैं, ये करने से तुम्हें ये मिलेगा, ये करने से संतान मिलेगी, ये करने से बिजनेस ऊपर, ये करने से ये, तो व्यक्ति अनुष्ठान करता है, कहीं ना कहीं उसकी शास्त्रों पे वेदों पे उस व्यक्ति की भी उसका भी विश्वास बढ़ने लगता है। तो ये उन लोगों से ठीक है जो भगवत भक्ति से संबंधित दूर दूर तक तो वेदों का जो ऋचाएं इत्यादि उसमें उसका फेथ बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर बोला उनको भी प्रसाद खिलाओ, अगर आपको अच्छे भक्त शुद्ध भक्त नहीं मिल रहे तो ऐसे कर्मकांडियों को भी खिला सकते हो, उससे भी फायदा होगा, क्योंकि ब्राह्मण है भगवत भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, मतलब अनुष्ठानों को कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है। उनसे तो ठीक है जो पशुवत जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खाना है, पीना है, सोना है, संतान उत्पन्न करनी है और मर जाना है, फिर किसी योनि में पैदा होंगे, आहार निद्रा भय मैथुन करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर किसी योनि में पैदा होंगे, इन 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे। लेकिन इस 84 लाख में से कुछ लोग अब जो वेदों की तरफ आकर्षित हुए, धर्म की तरफ आकर्षित हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो बहुत महान है, क्योंकि उनके संग से दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। जैसे जेल के अंदर हैं लोग और थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में जाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वहां पर जो नियमों को पालन कर जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जो जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, जेलर की नजरों में भी वो बहुत अच्छा होता है, वो कहता है भैया तू इन सबको भी बता, ये बाहर ही नहीं निकलते। थर्ड वाला कहता है मैं सेकंड में जाऊंगा, सेकंड वाला कहता है फर्स्ट में जाऊंगा, तो इनको भी बता। तो जेलर की नजर में वो व्यक्ति बहुत महान है जो कुछ कैदियों को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि जेल के अंदर थर्ड क्लास लेवल में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेकंड क्लास में पहुंच जाना यह भी जीवन का उद्देश्य नहीं है, फर्स्ट क्लास में पहुंच जाओ, रहोगे तो जेल में ही। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जेल से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो समझाता है, इसलिए जेलर को वो अच्छा लगता है। इसी प्रकार इस संसार में जो 84 लाख योनि में असंख्य योनियों में असंख्य जीवात्माएं भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार जो सड़ रही हैं संसार में, ऐसे लोगों को जो मार्ग दिखाते हैं, जो वेदों पर, देवताओं पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ उनकी रुचि बढ़ाते हैं, तो वो लोग ज्यादा महान बताए गए। और फिर हमने बताया था जैसे एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जिन्होंने वेद पढ़ लिए हैं और वेद पढ़ने के बाद वो समझ गए कर्म कांडों से भी उच्चा ज्यादा है मोक्ष प्राप्त करना। जैसे शास्त्रों में कहा है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विज, वेद पाठात भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है फिर? कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, वो ब्रह्म, वो ब्राह्मण है। जो व्यक्ति संस्कारों से वेदों को पढ़ने के बाद आगे बढ़ चुका है, अन्यथा जो ये नहीं कर रहा सब शूद्र के समान है, अगर दो पैर हैं तो शूद्र के समान है, कर्मों से देखा जाएगा क्या है व्यक्ति। इसलिए कई बार हो सकता है कोई पंजाबी हो, कोई गुजराती हो, कोई मराठी हो, कोई शूद्र हो, कोई वैश्य हो, कोई क्षत्रिय हो, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार कहीं ना कहीं इधर जाते हुए प्रसाद खा लिया सुकृति बढ़ गई, वहां जाते हुए किताब पढ़ ली तो सुकृति बढ़ गई, कोई भक्त के टच में आ गए तो सुकृतियां बढ़ गई, रुचि उत्पन्न हो गई, और यहां मंदिर में आ गए दर्शन करके तो भगवान से आकर्षित हो गया। हो सकता है कास्ट क्रीड कुछ और हो, कलर कुछ और हो, बोली कुछ और हो, देश कुछ और हो, लेकिन यहां पर आने के बाद अगर उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति की रुचि बढ़ रही है तो हो सकता है बाहरी रूप से देखने में वो शूद्र हो, किसी ऐसे कुल में पैदा हुआ हो जो घृणित कार्य करते थे या छोटे कार्य करते थे, मैला ढोते थे, या फिर वैश्य परिवार में जन्मे, बिजनेस करना था, कृषि करना, गोरक्षा इत्यादि करना, या फिर क्षत्रिय थे, कुल में पैदा हुए थे, या ये कास्ट थी या वो कास्ट थी, लेकिन यहां पर आकर, या हो सकता है ब्राह्मण भी हो लेकिन कभी ब्राह्मण वाले काम ना किए हो, काम हमेशा उल्टे सीधे किए हो, या जैसे कई बार हम बोलते हैं शर्मा शू स्टॉल है ना, अब शर्मा है लेकिन जूते की दुकान है, तो ये ब्राह्मण वाले काम नहीं है। ब्राह्मण के काम हमने क्या बताए, शास्त्र में क्या लिखे हैं, वेदों को पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना लोगों को, दान लेना, दान स्वीकार करना है ना, देना, तो विद्या का दान करते थे। तो इस प्रकार हो सकता है कोई कहीं का भी हो, लेकिन अगर उसकी रुचि भगवत कथा में हो गई है, भगवान के नामों में हो गई है, और वो अपने उसकी रुचि उत्पन्न हुई है तो उसकी रुचि को देखकर, उसके कर्मों को देखकर यह बताया जाएगा कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म की बात की जाती थी तो वृत्ति पूर्वक कार्य को बताया जाता था। समाज के चार भाग कर दिए जाते थे। एक ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो ज्ञानी हैं, तो ब्राह्मण कहलाते थे। अगर आज के परिवेश में देखें तो हम टीचर्स की बात कर सकते हैं, है ना, और कौन आते हैं, रिसर्च करने वाले आ गए, साइंटिस्ट लोग टाइप के लोग, साइंटिस्ट तो नहीं हो तो बड़े खतरनाक लोग हैं, बट स्टिल इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्हें ब्राह्मण की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन वो है नहीं ब्राह्मण। हम केवल इस प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं सोसाइटी की। जो लोग फौज में हैं, पुलिस में हैं, रक्षा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, नेता लोग हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, क्षत्रिय हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, कृषि को रक्षा कर रहे हैं, उनको क्या कह सकते हैं, वो है वैश्य। और जो इन सब की सेवा कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो क्या है, शूद्र। ये बाहरी दृष्टि से देखने का, आजकल के हिसाब से प्रभुपाद जी कहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे जो चतुर्वर्णमय सृष्टम जो भगवान ने बनाया है, चार वर्ण और आश्रम जो जिनकी स्थापना की है, उसका उद्देश्य क्या होता था, चाहे कोई किसी भी वर्ण और आश्रम में जिसमें भी उसकी वृत्ति है या जिस भी कुल में पैदा हुआ, वो उसी के कार्यों को पूरे अपने हिसाब से करे, अपना धर्म ना बदले, अपने वृत्ति पर कार्यों को ना बदले, जो मेंटालिटी है, जो संघ प्राप्त हुआ या जो है, उसके हिसाब से कार्य करे, जो वृत्ति है। तो अपने इन कार्यों को करते करते दूसरे का ना करे, भयावह बोला है शास्त्र में, उतने करे तो वो अगर अपने कामों को ठीक ढंग से करेगा तो मृत्यु के पश्चात वो थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा, उसका उसको प्रमोशन मिल जाएगा, और दूसरे अच्छे कुल में आएगा, फिर और अच्छे कुल में जाएगा, फिर और अच्छे कुल में जाएगा। और फिर इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति दैवी वर्णाश्रम धर्म की बात करें, अगर प्रभुपाद जी के अनुसार कि हम लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम में स्थित हैं, लेकिन हमारे इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु कृष्ण है, हो सकता है कोई शूद्र हो बाहरी दृष्टि से देखने में, सेवा करता हो, नौकरी करता हो, लेकिन आजकल तो बताया गया है कलयुग में हमारी जो वृत्ति है, जो हम कार्य करते हैं उसके हिसाब से पता चलता है। तो अगर हम लोग सेवा कर भी रहे हैं और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो ये दैवी वर्णाश्रम, अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं लेकिन कृष्ण मध्य में है, तो दैवी वर्णाश्रम धर्म कहलाएगा, वैष्णव कहलाएंगे, वो शूद्र नहीं कहलाएगा। वो वैश्य जो बिजनेस कर रहा है वो भी दैवी वर्णाश्रम धर्म में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण को मध्य में रखकर, तो वो भी वैष्णव कहलाएगा, वैष्णव वैश्य कहला सकता है लेकिन वो दैवी वर्णाश्रम धर्म है। क्षत्रिय भी जो है वो भी इस प्रकार, ब्राह्मण भी जो है वो भी वैष्णव कहलाएगा अगर वो कृष्ण को संतुष्ट करना चाह रहा है। लेकिन हुआ क्या, कालांतर में जब इन्हीं ब्राह्मणों ने देखा कि वेदों में हमारी इतनी स्तुति की गई है, इतना गुणगान किया गया है, और ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय हैं, ये कौन होते हैं हमारे से कंधा मिलाने वाले, हमें प्रणाम करो, दूर हो जाओ हमारी नजर से, जहां से हम निकले दूर हट जाओ, हम ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों में भी ये कैटेगरी के, हम तो उनसे, इन ब्राह्मणों से भी ऊंचे हैं, ये हमारा कुआं है जिससे हम पानी पीते हैं, अगर आस पास से भी निकले ना तो खबरदार, हमारे मंदिरों में प्रवेश मत करना क्योंकि ब्राह्मणों के लिए हैं, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं, हम दर्शन करते हैं, दूसरे शूद्र लोग ना आए यहां पर। तो इस प्रकार की मानसिकता जो है ब्राह्मणों के अंदर, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान की भावना बढ़ गई, और इस प्रकार उन्होंने वेदों को, शास्त्रों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर कर्तव्यों में गलत कर ढंग से प्रेजेंट कर दिया। इसलिए फिर कई कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने कहा ये गड़बड़ है, ये गलत है, और ये गलत, सब बराबर करो, सब एक है, उन्होंने और गड़बड़ कर दी। तो ब्राह्मण क्योंकि अपना कर्तव्य ठीक ढंग से नहीं कर पाए, उसका कारण यह भी है कि पिछले युगों में जो कथाएं आती हैं शिव पार्वती दक्ष इत्यादि में भी उनको श्राप मिला कि तुम दरिद्र हो जाओगे, तो ब्राह्मण दरिद्र हो गए, मांग मांग के खाने लगे। फिर कहा कि जो जितने भी युद्ध में राक्षस थे, प्रवृत्ति के लोग थे, वो लोग कलयुग में ब्राह्मणों के घुल में पैदा हो गए, कलयुग में आकर युद्ध में जो बचे उन लोगों को लगा कि अब तो मर जाएंगे, बच जाएंगे, तो जो बचे वो कहते हैं कहां पर? कलयुग में ब्राह्मणों के रूप में पैदा होकर आए कि ब्राह्मण को तो नहीं मारेंगे, तो इस प्रकार ब्राह्मण के रूप में। तो बताते हैं राक्षस, ऐसे शब्द आता है कि ब्रह्म योनिषु, सारे कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आ गए। तो इसलिए हम देखते हैं जो कलयुग के जो लोग हैं, बेशक वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, लेकिन वृत्ति राक्षस वाली है। भारद्वाज मीट शॉप। काम ब्राह्मणों वाले नहीं है। अगर ऐसा नहीं भी खोला तो हमारे एक जहां पर हम रहते थे वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर का जो ब्राह्मण मेन प्रीस्ट था, उस प्रीस्ट का जो बड़ा लड़का था, बड़े से छोटा, वो यहां पर अलका कोरी नाम का एक शॉप है, मीट शॉप, वो छुपके से वहां पर आता था मीट खाने के लिए। ब्राह्मण कुल का व्यक्ति है ना, मांसाहार कर रहा है। इसलिए अभी भी है ऐसा नहीं, मैं तो मंदिर के प्रीस्ट की बात कर रहा हूं। वैसे जो ब्राह्मण जो कहे हम तो मंदिर में नहीं पूजा करते, बाहर वाले हैं, तो वो भी खा रहे हैं, वो भी पी रहे हैं, वो भी सारे काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो राक्षस थे पुराने, सारे जब ब्राह्मण के योनियों में आ गए तो राक्षस वाले काम कर रहे हैं, इसलिए जन्म से सारे शूद्र हैं। तो कोई कहे मैं जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, कोई फायदा नहीं, काम कैसे कर रहे हो? कोई कहे जी मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ था, नहीं नहीं नहीं, काम क्या कर रहे हो? यहां पर एक व्यक्ति जैसे गुर्रा आता है तो सबसे पहले तुम ही भागते हो, ये कैसा क्षत्रिय है? क्षत्रिय तो कभी भी पीठ नहीं दिखाता किसी को। आपके जो क्षत्रिय है वो छुप छुप के मारते हैं, बम छोड़ के भाग जाएंगे, ये कैसे क्षत्रिय भाई? कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार जो कर्तव्य पूर्व काम नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंगली, तो हम समझ सकते हैं कि कलयुग में सारे शूद्र हैं। और जो रीतियां चली पुरानी तो वो भी गलत थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना कर्तव्य ठीक ढंग से पालन नहीं किया। ये तो कृपा है पूरे विश्व के ऊपर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की, जिन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो समाज में हेडलेस सोसाइटी, क्योंकि ब्राह्मण को बोला जाता था वो समाज का मुख है, फेस, तो जो खराब हो चुका था, गंदा हो चुका था, जिस धर्म को, जिन कपड़ों को, जिस वैराग्य वाले जीवन को लोग अब अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे, इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते थे, और लोगों का विश्वास उठता गया था भगवान के भक्तों से, सन्यासियों से, जिन्होंने इन कपड़ों का इस्तेमाल कर गलत गलत काम किए। यहां तक कि एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में, जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं तो इंद्र जो है नाना प्रकार के सन्यासियों का वेशभूषा डालकर आता, और बार बार अश्वमेध यज्ञ करते हुए जो सोम अश्वमेध होने लगता है तो अश्व चुरा लेते थे, ब्राह्मण के रूप में आते थे, सन्यासी के रूप में आते थे, अलग अलग चोला डालकर। उनके पुत्र ने कहा मैं इसको मार दूंगा, है तो इंद्र ये। तो रोक दिया गया, मत मारो क्योंकि लाल वस्त्रों में आ रहा है। और बाद में बताया गया कि जितने तरह के उसने वस्त्र चेंज किए थे सन्यासियों के, वो सारे आने वाले समय में उन सब का रिप्रेजेंट करता है जो इस समय चल रहे हैं, जो लाल कपड़े पहनकर अलग अलग प्रकार की संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन खोले हुए हैं, लेकिन सब में मायावाद है, सब में भगवान की स्तुति नहीं, खुद की स्तुति है, खुद का गुणगान है, और इस प्रकार। तो ये भी बताया भक्त। तो इस प्रकार जो है जो गलत गलत रीतियां चली, लेकिन शीला प्रभुपाद जी ने क्या किया, फिर से ब्राह्मण धर्म की स्थापना करी, वैष्णव धर्म की स्थापना करी इतने सुंदर ढंग से। और जो जीवात्माएं संघर्ष कर रही हैं संसार में, जो चार वेद पढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित भी हो रहा है, लेकिन वेद पढ़कर भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कर्मकांड में जाऊं, ज्ञान कांड में जाऊं, कहां जाऊं, तो ऐसे लोगों को भी जब एक छोटी सी बुक मिल जाती है ना, जन्म मृत्यु से परे, कृष्ण की ओर, धर्मा, एक छोटी सी किताब जो कि सारे वेदों का सार है, प्रभुपाद की छोटी सी किताब चारों वेदों का सार है, सार ही नहीं उसे भी बहुत कह सकते, सार ही है कह सकते हैं, और अच्छा शब्द नहीं मिल रहा मेरे को, क्योंकि चार वेद पढ़ने के बाद भी अगर कोई कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर कर्म कांड है, उसके अंदर ज्ञान कांड भी बताया गया, उपासना कांड बहुत थोड़ा सा बताया गया, तो कंफ्यूज हो जाते कई बार व्यक्ति, क्योंकि वो वेदों को पढ़ने के बाद व्यक्ति अलग अलग डिविजन्स में चला जाता है। लेकिन कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं वेदेश सर्वम अहमेव वेद्या। वेदों को, चार वेदों को पढ़ने के बाद जो उसका कंक्लूजन है वो ये कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और यही वर्शिपेबल है, यही पूज्य है। ये चार वेदों का सार है, ये कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो अपने ग्रंथ लिखे वो चार वेदों का सार है। चार वेद पढ़ ले व्यक्ति तो कंफ्यूज रहेगा, लेकिन प्रभुपाद जी की एक छोटी सी किताब पढ़ ले तो उसको मालूम पड़ जाएगा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और यह आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और श्री कृष्ण से ही असंख्य जो है भगवान के अवतार होते हैं, असंख्य जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं, सृष्टि करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर हम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। एक एक छोटी छोटी किताबों में लिखा है। क्रीम कह रहे हैं प्रभु जी, इनको क्रीम मक्खन बहुत पसंद है, तो इन्होंने बताया कि चार वेदों का क्रीम है एसेंस। तो इस प्रकार हम लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ब्राह्मणों को इतना ऊंचा रखा गया, इसलिए भगवान कहते हैं कि उनके उन पूजा करता हूं। इसलिए आज के श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि देवताओं, साधु पुरुषों, अपने पितरों, सामान्य जनों, अन्य पारिवारिक सदस्यों, सभी को जो है प्रसाद देना चाहिए भगवान को ऑफर कर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रत्येक जीव को परमेश्वर का अंश मानते हुए प्रसाद बांटें, यहां तक कि गरीबों को भी प्रसाद वितरित करें। तो इस संस्था में यही होता है काम, क्या कि प्रचुर मात्रा में प्रसाद बनता है, सुबह भी बढ़ता है, शाम को भी बढ़ता है, और मिड डे मील्स के द्वारा तो 6-7 लाख लोगों को दिल्ली में भोजन मिलता है प्रसाद के रूप में। फिर कोई भी हो सबको प्राप्त हो रहा है प्रसाद, और फिर कलयुग में प्रत्येक वर्ष अन्न का अभाव रहता है, प्रत्येक वर्ष अन्न का अभाव रहता है, और इस तरह परोपकारी लोग गरीबों को खिलाने में प्रचुर मात्रा में खर्च नहीं करते। इसके लिए उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा शुरू कर दी है, एक नया तरीका निकाला है कि आजकल गरीबों को कोई नहीं खिला रहा तो चलो दरिद्र नारायण करके मेरा पहला धर्म दरिद्र नारायण को मैं भोजन दूंगा। तो इस प्रकार की संस्थाएं खोलकर उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसका निषेध है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दरिद्र को आप नारायण के सामने के समकक्ष बोल दो। ये बात ठीक है कि वो नारायण उसके हृदय में भी है, लेकिन आप ये मत बोलिए कि दरिद्र ही नारायण है, ये गलत है। आप ये बोलिए कि वो उनका अंश है और मुझे इनकी सेवा करनी है और इनको प्रसाद खिलाना है, इनको भगवत ज्ञान देना है, ताकि ये बता सकूं कि असली नारायण, असली कृष्ण ही भगवान है। ये दरिद्र नारायण बेचारा मर जाता है, उसके दांत में दर्द है, उसके पेट में दर्द है, ये कैसा नारायण है, भूखा है बेचारा नारायण, ऐसा नहीं करेगा। अपनी फिलॉसफी नहीं बनानी चाहिए। आप ये बोलिए कि मुझे उसकी सेवा करनी, वो भगवान का अंश है, हर एक के हृदय में परमात्मा है, तो हम उनकी सेवा करें, लेकिन सेवा किस भाव में होनी चाहिए कि ये भगवान से जुड़ सके। इसके लिए उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा का शब्द ढूंढ निकाला जिसका निषेध है। हर एक को चाहिए कि वह भव्य प्रसाद का वितरण हर एक को परमेश्वर का अंग मानते हुए करे, ना कि शब्द जाल द्वारा गरीब मनुष्य को ही नारायण बना दे। हर व्यक्ति परमेश्वर से संबंधित है, किंतु उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित होने से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बन गया है। ऐसा मायावादी दर्शन अत्यंत घातक है, विशेष रूप से भक्त के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी दार्शनिकों की संगति करने के लिए मना किया है, जो ये बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का शरीर नहीं है, उनको क्या खिलाना, अरे हर जगह भगवान है तो किसी को भी खिला दो, नहीं ये मायावाद है। तो महाप्रभु ने मना किया और कहा कि मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। ऐसे लोगों से अगर कथा भी सुनोगे, बड़े बड़े हमारे देश में प्रकांड पंडित हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, और थोड़ी सी फेम मिलने के बाद वो अपनी किताबें लिखना शुरू कर देते हैं, अपनी गीता लिखना शुरू कर देते हैं, और अपने मन से अपने विचार में जो आता है उस हिसाब से अपने तात्पर्य दे देते हैं। खबरदार ऐसे शास्त्र पढ़े ना, क्यों? क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसे मायावादी वो लोग जो भगवान के शरीर को हमारे जैसा शरीर मानते हैं, मिट्टी का शरीर मानते हैं, या भगवान को जन्म लेता देख बोलते हैं वो भी तो हमारी तरह हैं, आखिर वो भी तो मरे, आखिर राम भी तो अपनी पत्नी के पीछे भाग रहे थे, देखो ना वो भी रोते रोते भटके, कर्मों का फल है कि राम ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए उसको पत्नी से वियोग सहना पड़ा, कर्म का फल है इसलिए उनको राज्य नहीं मिला, ये कृष्ण के कर्मों का फल है कि उनको जो है वृंदावन से निकाल दिया गया, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे लोग। भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते। गीता पढ़ो पहले, गीता में लिखा है भगवान कह रहे हैं भैया आम नहम लिम्पन्ति कर्मा, मैं कर्म से मैं नहीं अटैच होता और इन कर्मों का फल मुझे छू नहीं सकता। तमोगुण रजोगुण सतोगुण से मैंने पूरी सृष्टि चला रहा हूं लेकिन इनका प्रभाव मुझ पर नहीं है। तो मूर्ख लोग बोलते नहीं हमारे जैसे ही भगवान महापुरुष हैं, थोड़ा तुम भी मेहनत करो तुम भी महापुरुष बन जाओगे, तुम भी भगवान बन जाओगे, बोलते हैं लोग ऐसे। कई बार लोग बोलते रहे देखो शिव, शिव ने क्या किया, जो समुद्र से निकला क्या विष निकला, प्राणायाम करते थे वो, साधना सिद्ध थे तो यहां अटका लिया उन्होंने, यहां तुम भी करो। अरे वो सर्जरी करा उन्होंने, देखो हमने बेटे का गला हटाया और दूसरा लगा दिया, सबसे पहले डॉक्टर थे। हाँ ठीक है, इस तरह से तुलना कर सकते, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि वो हमारे तरह ही एक डॉक्टर थे, एक सर्जन थे पिछले जन्माने वाले। अरे नहीं भैया, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो सृष्टि के मेन हीरो हैं जो संसार चला रहे हैं, वो हमारी तरह नहीं है। वो उनके गुणों को देखो, अरे पर्वत तो भगवान ने भी उठाया था 400 किलो, तू भी उठा डाल, भगवान को गोल्ड मिला तू भी गोल्ड ले ले। ये एक्टिविटी भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य हैं मेरे जन्म और कर्म। जो इनको समझ जाएगा, इसकी प्रकृति को समझ जाएगा, वो वापस नहीं आएगा इस संसार में। तो ये काम है ब्राह्मण का, इसलिए ब्राह्मण पूज्य हैं, इसलिए वैष्णव पूज्य हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान का संदेश दे रहे हैं ताकि हम लोग इन 84 लाख प्रकार की जो योनियां गिनाई, अलग अलग चेतना की योनियां गिनाई, इनसे निकलकर भगवान के धाम वापस जा सके। इसलिए ब्राह्मण पूज्य हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, इसलिए वैष्णव पूज्य हैं कि जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का रास्ता मार्ग दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए हमें मायावादियों का नहीं सुनना चाहिए जो भगवान की भगवत्ता को ही खत्म कर दें। यदि कोई मायावादी का दर्शन से नाता जोड़ता है तो उसके भक्तिमय जीवन का विनाश अवश्य संभव है। मतलब कोई अगर ऐसे मायावादियों के संरक्षण में चला जाए जो ये बोले भगवान का शरीर ऐसा है, भगवान तो हमारे जैसे थे, महापुरुष थे, ये सुनते ही व्यक्ति को कपड़ों समेत छलांग मारनी चाहिए। कहां? गंगा में, नाले में नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। बताते हैं अगर कोई सामने से मायावादी आ रहा हो या तुमने कहीं उसकी कथा सुन ली हो जिसमें वो भगवान को हमारा जैसा व्यक्ति बता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन करते ही गंगा में कपड़ों समेत ही कूद जाना चाहिए। नहीं करना ऐसे लोगों का संग। और अगर हो गया कि कर लिया और आपको लग रहा है पानी वानी नहीं है आसपास, तो माफी मांग ले भगवान से और हरे कृष्ण मंत्र जप लें, राम राम कर लें, भैया निकल जाए, अगली बार फिर वैष्णव के पास आ जाए। इसलिए ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी, ये गीता से ही बोलेंगे, ये भागवत से ही बोलेंगे और बड़े बड़े पंडालों में लाखों लोग सुनेंगे, लेकिन अंत में कहेंगे कि भगवान के अंदर से ना कोई और बोल रहा था, भगवान के अंदर से कोई और बोल रहा था। हाँ, भगवान के अंदर से शिव बोल रहे थे, भगवान के अंदर से शिव बोल रहे थे। हाँ, एक्चुअली ये राज है भैया, अपना राज अपने पास रखो, आप समझ लो उस बात को। अगर भगवान इतनी गीता बोल सकते हैं, ये बता सकते हैं तुम सब जीवात्माओं का बाप मैं हूं, तो ये नहीं बता सकते मेरे अंदर से कोई और बोल रहा है। कह रहे हैं गुह्यतर गुह्यतम गुह्यतमम, ये टॉप सीक्रेट में बता रहा हूं, तो टॉप सीक्रेट में ये नहीं बता सकते थे मेरे अंदर शिव बोल रहे हैं। एक इतनी बड़ी संस्था चल रही है, लाखों लोग दिमाग खराब कर रहे हैं उसमें अपना, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं लोगों के, अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, लड़कियों को ब्रह्मचारी बना रहे हैं, घर छोड़ दे, पति को भाई बोल दे, सब अंदर इधर आ जाओ, सब कईयों के घर उजाड़ दिए। मेरे पास एक बार लेक्चर दे रहा था, पर लड़की आई मेरे पास, गुरुजी मैं कहा जी, कहते मैं ना पहले वहां जाती थी, समझ रहे कहां जाती, मैंने 6 साल बिताए, खूब ध्यान लगाया, अपने पति को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सफेद साड़ी में आ गई, और फिर मैंने वहां की गंदगी देखी, क्या क्या गंदे काम होते हैं, हुई तो मैं फिर वापिस ही आ गई। मुझे बताओ क्या क्या करना है, अब 6 साल जमा साल खराब करके अपने भाई पूछने, तो हमने बोला हरे कृष्ण महामंत्र जपो, भगवत गीता और भागवतम पढ़ो, शुद्ध भक्त की जिसमें टिप्पणी है वो बताएंगे जीवन क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। फालतू के चक्रों में मत पढ़ो। एक इतनी बड़ी संस्था चल रही, बताइए भगवान खत्म कर दिए उसने सृष्टि से, कृष्ण राम सब हटा लिए, कहा कि अल्टीमेटली वो है। अब सोच कर देखिए। तो इसलिए कलयुग में इस प्रकार के लोगों को की भी संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कम अग्रसर होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे मायावादी, ऐसे दुष्प्रचारियों से बचें, ना तो इनका सुने और ना ही इनका संग करें। अब ये प्रसाद भी बांटते हैं, दुकान से जाएंगे 10,000 पत्तल मंगाएंगे और जो खाना बना उसी में डाल देंगे, कहेंगे जो पत्तल में डल गया वो प्रसाद है। ये कैसा पात्र है भैया, मतलब डोने का मतलब जो भी डोने में प्रसाद है। यहां हम लोगों के लिए जो सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश जो बता रहे हैं, हम जैसे परिवार के लोगों के लिए जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप जो भोग बनाएं उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें पहले, और फिर अपने पितरों को श्राद्ध में अपने पितरों को देने के लिए वैष्णवों को खिलाएं, ब्राह्मणों को खिलाएं, अन्य लोगों को खिलाएं, पशुओं तक को भी खिला सकते हैं। क्या होगा उससे कि जो भी कृष्ण का प्रसाद मुख में रख लेगा वो भगवान का भक्त बनेगा ही बनेगा। समय लग सकता है क्योंकि बहुत पाप हैं, बहुत अनर्थ हैं, लेकिन भगवान का प्रसाद खाने से वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आएगा यार। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन सावधान रहें, ऐसे लोगों का संग ना करें जिससे कि आपकी भक्ति को खतरा हो। तो आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यानपूर्वक करें हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछिए प्लीज। धन्यवाद। ग्रंथराश्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।
पूरे संसार में स्थापना कर रहे हैं, बोली बाय बोली लास्ट बात कहीं और निकल जाता है।